दिन भर तारीख 23 मई दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ईरान के चबहार बंदरगाह के लिए ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता।
गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त।
भारत ने किया दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी शटल का सफलतापूर्वक परीक्षण।
आने वाले टाइम में दो और ट्रायल होंगे, उसके बाद इसका एक बड़ा नमूना बनाया जाएगा। अगर सक्सेसफुल रहा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी उसमें बैठ के जा सकेंगे।
3 साल बाद चरमपंथियों ने फिर से निशाना बनाया राजधानी श्रीनगर को, एक अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत और ईरान के बीच चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इससे अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को नया रास्ता मिल जाएगा। भारत चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $50 करोड़ मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा के दूसरे दिन भारत और ईरान के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। भारत और ईरान ने आतंकवाद, चरमपंथ और साइबर अपराध से मिलकर निपटने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 देशों के लिए महत्वपूर्ण इस समझौते से क्षेत्र का इतिहास बदल जाएगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चाबहार बंदरगाह को भारत और ईरान के बीच सहयोग का प्रतीक बताया है। तेहरान में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात की। भारत प्रशासित कश्मीर में श्रीनगर के जड़ीबल में पुलिस थाने के बाहर आज अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना में श्रीनगर के बाहरी इलाके में टेंगपुरा में हुए एक हमले में एक स्थानीय नेता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया को दिए एक बयान में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रवक्ता ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। तुर्की में सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की इजाजत देने वाले विधेयक को लेकर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने चिंता जाहिर की है। एंगेला मर्केल ने कहा कि उन्होंने इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान से भी बात की है। कहा जा रहा है कि इस नए विधेयक का मकसद कुर्द समर्थक पार्टी HDP और मुख्य विपक्षी पार्टी CHP के सांसदों को निशाना बनाना है। इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के सम्मेलन में एंगेला मर्केल ने यह कहा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका, आजाद मीडिया और एक मजबूत संसद जरूरी है। तुर्की की संसद के 1/4 सांसदों पर कानूनी कार्रवाई की रोक को हटा लेना गहरी चिंता का विषय है। मैंने ये तुर्की के राष्ट्रपति के सामने साफ कर दिया है। अभी हमें इस मामले में कई जवाब नहीं मिले हैं और इस मुद्दे को आगे हम करीब से देखते रहेंगे। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के लताकिया प्रांत में 2 शहरों में सिलसिलेवार कार बम धमाके और आत्मघाती हमले हुए हैं। विपक्षी कार्यकर्ताओं का कहना है कि तारतोस और जबले शहर के बस अड्डों पर एक साथ हुए इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकारी मीडिया सूत्रों के मुताबिक कम से कम 78 लोगों की मौत इन धमाकों में हुई है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। यमन में अदन शहर पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सैनिकों को निशाना बनाते हुए 2 धमाके किए हैं, जिसमें कम से कम 41 लोगों की मौत की खबर है। मरने वाले सभी लोग सेना में भर्ती के लिए चबा हुए थे। अदन को पिछले साल सेना ने विद्रोहियों से छुड़ा लिया था। फिलहाल यमन के राष्ट्रपति का कामकाज यहीं से चल रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत और ईरान के बीच संबंधों का एक नया दौर था, नया अध्याय था। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते के तहत भारत चाबहार बंदरगाह का निर्माण करेगा। संस्कृति विज्ञान और तकनीक, लाइब्रेरी विज्ञान और दोनों देशों के आयात निर्यात बैंकों के बीच सहयोग संबंधी समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चाबहार बंदरगाह ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और आर्थिक भागीदारी का नया अध्याय खोल दिया है। उन्होंने ईरान के साथ सभ्यता और परंपरा से जुड़े रिश्तों को याद करते हुए कहा कि भारत ने मुश्किल की घड़ी में हमेशा ईरान का साथ दिया है। समझौते के बाद मोदी ने कहा,
बायलेटरल एग्रीमेंट टू डेवलप द चाबहार पोर्ट।
नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि चाबहार बंदरगाह और संबंधित आधारभूत संरचना को विकसित करने का द्विपक्षीय समझौता और इसके लिए भारत से 500 मिलियन डॉलर यानी कि 50 करोड़ अमरीकी डॉलर की मदद एक मील का पत्थर है। दोनों देशों ने साझा बयान में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा, चाबहार बंदरगाह दोनों देशों के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बंदरगाह कई देशों के साथ संपर्क को जोड़ेगा और इससे भारत व तेहरान के बीच आर्थिक रिश्तों का अधिक प्रसार होगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने समझाया कि कैसे ये समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा। हसन रूहानी कह रहे थे कि ऊर्जा क्षेत्र में ईरान की स्थिति, खदानों के मामले में भारत की समृद्धि और चाबहार जैसे रणनीतिक बंदरगाहों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच एल्यूमिनियम, स्टील और पेट्रोकेमिकल्स जैसे तमाम उद्योगों में संयुक्त साझेदारी हो सकती है। हसन रूहानी ने यह भी कहा, आतंकवाद की जड़ें सीरिया, यमन और क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों तक फैल चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन का अंत मिर्जा गालिब के एक शेर से किया।
गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफसे खुद तमाम अस्त, जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त। मीन्स
यानी अगर हम अपना मन बना लें तो काशी और काशान के बीच की दूरी केवल आधा कदम होगी। नरेंद्र मोदी जब शेर पढ़ रहे थे तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी मुस्कुरा रहे थे। भारत और ईरान के समझौते के बाद ईरान और अफगानिस्तान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ और उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत के लिए ईरान होते हुए अफगानिस्तान जाने का नया व्यापार मार्ग खुल जाएगा। इससे चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद भी मिलेगी। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की पूर्व विदेश सचिव और ईरान में भारत के राजदूत रह चुके मुचकुंद दुबे से और सवाल यही रखा कि क्या सबसे बड़ा समझौता चाबहार बंदरगाह ही है।
ये बहुत दिन से स्थगित रहा है, किसी कारणवश इसमें जितना लागत होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी और इसको चालू करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो बरसों से नहीं लिए गए हैं। और अगर हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ईरान और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ एक समझौता और हिंदुस्तान और ईरान के साथ एक समझौता हुआ है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये निश्चय ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें ईरान के बंदरगाह के द्वारा अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से के साथ व्यापार करने में सुविधा होगी, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान के साथ हमारा व्यापार नहीं हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान हमको ट्रांजिट राइट नहीं देता है अपने सामान को पाकिस्तान की सीमा से होते हुए अफगानिस्तान तक ले जाने के लिए, और न तो उसने ऐसा ट्रांजिट राइट अफगानिस्तान को दिया है। लेकिन कम से कम अफगानिस्तान के एक हिस्से के साथ ये व्यापार का मार्ग खुलेगा और एक हिस्से से फिर अंदरूनी कदमों के द्वारा दूसरे जगहों पर भी हिंदुस्तान के जो माल है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ के दूसरे हिस्सों में जा सकती है।
तो आपको लगता है कि ये जी
एक अच्छा कदम है। दूसरी ओर हम चाहते थे कि जो पुराना जो सोवियत यूनियन था उसके साथ जो रिपब्लिक थे सेंट्रल एशिया के, उनके साथ हमारे व्यापार बढ़ें और उनके सीमा से होते हुए रूस के साथ हमारे व्यापार बढ़ें। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी असुविधा ये थी कि किस प्रकार ईरान की पूरे उत्तर से दक्षिण तक की सीमा से होते हुए ये सामग्रियां जाएं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए रेल के यातायात का साधन क्या है, उसके लिए रोड के यातायात का क्या साधन है। और अगर हमने ईरान के साथ समझौता किया है इन साधनों को प्रशस्त करने के लिए, उसमें और लागत बढ़ाने के लिए, तो निश्चय भी ये भी बहुत बड़ा कदम है।
मुचकुंद जी, सवाल ये कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के निर्माण के लिए जो चीन के साथ समझौता किया है, क्या पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब में इसको देख सकते हैं हम?
हम इसको जवाब में देख सकते हैं, हम तो इसको एक पूरक के रूप में देखना चाहेंगे, एज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक भारत के पश्चिम के दो हिस्सों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों और दोनों प्रोजेक्ट्स अगर सफलतापूर्वक उनका कार्यान्वयन हो, उनका अमल हो, तो अगर ये राष्ट्र आपस में सहयोग करें तो सबके लिए अच्छा होगा, इसमें कोई स्पर्धा की बात नहीं है। लेकिन अगर सहयोग नहीं है तब इसमें कोई संदेह नहीं कि जो चीन को एक मार्ग मिलेगा ग्वालियर से होते हुए पूर्वी अफ्रीका तक जाने का, पश्चिमी एशिया तक जाने का, वो मार्ग कुछ हद तक हमारा भी एक ऑप्शन होगा वो चार बाहर के थ्रू। लेकिन ये नहीं कि हम उनके मार्ग को रोक पाएंगे या उनको अवरुद्ध करने के लिए कदम उठाया गया है, अंततः ये दोनों पूरक कदम है।
ईरान के चाबहार बंदरगाह के समझौते का विश्लेषण कर रहे थे पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे। लेकिन ये तो बात हुई भारत और ईरान के संबंधों की, उसकी राजनीति की। थोड़ा सा लीक से हटिए, आपको ईरान ले चलते हैं एक पर्यटक के रूप में। हमारी सहयोगी वंदना की आंखों से देखिए ईरान को।
वो तेहरान की एक खुशनुमा सुबह थी। ईरान यात्रा का मेरा पहला दिन, मैं ईरान के पूर्व शाह के महल के बाहर कैमरा लेकर खड़ी ही थी कि एक ईरानी महिला इशारा करते हुए मेरे पास आई। न वो मेरी जबान समझ पा रही थी न मैं उनकी। उसने इशारा करना शुरू किया मानो कोई हिंदुस्तानी लड़की माथे पर बिंदिया सजा रही हो और होंठों पर लिपस्टिक। मैंने इशारों से अंदाजा लगाते हुए उसे लिपस्टिक दी, जिसे उसने तपाक से अपने होंठों पर लगा लिया और खुद को बड़े चाव से आईने में देखा। फिर उतनी ही फुर्ती से उसने लिपस्टिक मिटा दी मानो उस पर कोई नजर रख रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे जोर से गले लगाया और मेरे गाल प्यार से चूमकर चली गई। मैं देर तक उस झप्पी की गर्माहट महसूस करती रही। मैंने सोचा यात्रा का आगाज इतना प्यारा है तो अंजाम कैसा होगा। पिछले साल ईरान में बिताए 10 दिन मुझे ऐसे कई यादगार लम्हे दे गए। कानों में घुलता ईरानी संगीत तो कहीं हिंदुस्तानी गीतों की गूंज। इस सफर के बहाने मेरे लिए ईरान के बारे में नया जानने को बहुत कुछ था। मसलन मेरे लिए एक अजीबोगरीब किस्सा रहा वहाँ ईरानी महिलाओं के नाक का। दरअसल गली नुकड़ों पर वहाँ मैंने अक्सर लड़कियों को नाक पर पट्टी बांधकर घूमते देखा। अब इतनी सारी युवा लड़कियों की नाक एक साथ कैसे फूट सकती है, मैंने बड़ी मासूमियत से ईरानी दोस्त से पूछा तो उसने हंसते हुए बताया कि जैसे आपके देश में लोग सुंदर दिखने के लिए होठों की या अन्य अंगों की सर्जरी करवाते हैं, ईरानी लड़कियों में नोज जॉब यानी नाक की सर्जरी का जबरदस्त क्रेज है और साथ ही क्रेज है हिंदी फिल्मों का भी। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूं, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। नेशनल ज्वेलरी म्यूजियम भी जाना हुआ जहां भारत से लाए गए कई कीमती हीरे रखे गए हैं, जैसे दरियाए नूर। इतिहासकार बताते हैं कि नादिर शाह इसे अपने साथ भारत से ईरान ले आए थे, लेकिन कोहिनूर की तरह इसकी चर्चा कम ही होती है। हाँ, नेहरू और गांधी की चर्चा जरूर सुनी ईरान में। वहाँ कई दुकानों की दीवारों पर उनकी तस्वीरें सजी थी। और यात्रा के आखिरी दिन मुझे एक प्यारा सा तोहफा भी मिला। एक ईरानी बुजुर्ग ने अपना पुराना सिक्का धागे में बांधकर मुझे भेंट किया, जो मैंने बहुत संभाल कर रखा है। वंदना, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। रुक भारत का एक बार फिर से करते हैं। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज एक और सफलता हासिल की। भारत ने फिर से इस्तेमाल किए जा सकने वाले अपने पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी नाम के इस रीयूजेबल स्पेस शटल ने आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष का कहना है कि ये प्रयोग अंतरिक्ष में आधारभूत ढांचा तैयार करने की लागत कम करने के लिए भारत का एक सफल प्रयास है। लेकिन ये क्यों है, भारत की इसे सफलता क्यों कहा जा रहा है, जानते हैं सुमरन प्रीत कौर की इस रिपोर्ट में।
4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3,
बस कुछ ऐसा ही उत्साह भरा माहौल था जब भारत की रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLVTD ने श्री हरिकोटा से उड़ान भरी। इसे बंगाल की खाड़ी में बनाए गए 5 किलोमीटर के वर्चुअल रनवे पर उतारा गया। भारत के लिए इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारतीय इंजीनियरों का मानना है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंचाने की लागत को कम करने का उपाय उसे रिसाइकिल करना या दोबारा उपयोग लायक बनाना है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दोबारा इस्तेमाल में लाने वाली तकनीक कामयाब रही तो वो इसकी कीमत को 10 गुना तक कम कर सकते हैं। क्या है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की खासियत, बता रहे हैं विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला।
स्वदेशी स्पेस शटल का लॉन्च हुआ, जिसको इसरो ने कहा है मिशन अकम्प्लिश्ड। ये एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट है भारत और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के लिए। उमदा टेक्नोलॉजी है, लॉन्च की कॉस्ट को 10 गुना कम करा जा सकता है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसको इसरो बोलता है, वो 6.5 मीटर का था और करीब 2.25 टन इसका भार था। एटमॉस्फेयर में ये करीबन 65 किलोमीटर तक ऊपर गया, उसके बाद ये वापस मुड़ा, बंगाल की खाड़ी में तय जगह पे इसको वापस उतारा गया। आने वाले टाइम में 2 और ट्रायल होंगे, उसके बाद इसका एक बड़ा नमूना बनाया जाएगा। अगर सक्सेसफुल रहा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी उसमें बैठ के जा सकेंगे। अंतरिक्ष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी सस्ता हो जाएगा, और जो आगे आने वाले टाइम में स्पेस बेस्ड सोलर पावर की बात करी जा रही है, वो भी एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बन जाएगी। इस तरह की व्हीकल, जिसको विंग्ड व्हीकल कहा जाता है, दुनिया ने आमतौर पर इसको रिटायर कर दिया है।
इसकी रफ्तार थी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज। लेकिन जहां दुनिया के कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहां भारत ने ऐसा परीक्षण क्यों किया?
अमेरिका ने अपना स्पेस शटल किस कारणों से उड़ाना बंद किया, और वो तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी और अमेरिकन एक्सपर्ट ही जानते हैं। जैसा जनता को बताया गया वो ये था कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, उस टेक्नोलॉजी जो थी वो ऑब्सोलीट थी, तो उसका उन्होंने समझा कि आगे प्राइवेट सेक्टर के रॉकेट्स को यूज करें, जिससे कि अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजा जा सके। प्राइवेट सेक्टर का मानना था कि रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा कारगर होगी। लेकिन जैसे मेरी बात हुई थी कैप्टन सुनीता विलियम से, जो कि अमरीकी एस्ट्रोनॉट हैं, फ्रांस की स्पेस एजेंसी के चीफ जो हैं डॉक्टर जीन वाई लिगाल, उनका भी ये मानना है कि विंग्ड रीयूजेबल व्हीकल जो है अल्टीमेटली कॉस्ट कम करने के लिए वही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आगे कामयाब होगी। 21वीं सदी में इस वक्त हिंदुस्तान ऐसा अकेला देश है जो कि विंग्ड व्हीकल की ट्रायल किया और सक्सेसफुल रहा।
इसरो का मानना है कि ये परीक्षण बहुत बड़ी कामयाबी है और एक छोटा सा कदम है। इसके अंतिम संस्करण को तैयार होने में 10 से 15 साल लगेंगे। सुमिरन प्रीत कौर, बीबीसी दिल्ली।
तो भारत ने किया दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्वदेशी शटल का सफलतापूर्वक परीक्षण।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत प्रशासित कश्मीर में 3 साल बाद चरमपंथियों ने एक बार फिर से राजधानी श्रीनगर में हिंसक हमले किए। आज हुए 2 अलग-अलग हमलों में 1 अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी मारे गए। इन हमलों पर भारत का समर्थन करने वाले राजनीतिक गुटों ने चिंता जताई है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आज सुबह पुराने श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में पुलिस थाने के बाहर तैनात एक पुलिस अफसर नजीर अहमद और इनके सहायक गुलाम मोहम्मद उस समय मारे गए जब मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने इन पर नजदीक से गोलियां चलाई। दोनों पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद ही शहर के पश्चिमी इलाका टेंगपोरा के निकट अज्ञात बंदूकधारियों ने एक और पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल किया, तहम इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। 26 वर्ष से सक्रिय चरमपंथी गुट हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है। ग्रुप ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऑपरेशन चीफ बुरहानुद्दीन के आदेश पर यह हमले हिजब के विशेष स्क्वाड ने किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सईद मुज्तबा जावेद गिलानी कहते हैं,
ये 2 इंसिडेंट्स आज हुए जिसमें हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो काफी दिन के बाद श्रीनगर में ऐसे अटैक्स हुए हैं। आप लोगों ने देखा है कि पिछले कई महीनों से जो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ जो हमारे ऑपरेशंस है उसमें काफी टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुए हैं।
गौरतलब है पिछले 3 वर्ष से राजधानी श्रीनगर में कोई हमला नहीं हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी अधिकारियों ने श्रीनगर को मिलिटेंसी से मुक्त करने का दावा किया था। जून 2013 में भीड़भाड़ वाले बाजार हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ऐसे ही हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। भारत का समर्थन करने वाले राजनीतिक वर्गों ने आज हुए हमलों को सरकार के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बताया है। अपोजिशन नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमलों पर शंका व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से अपील की है कि वो श्रीनगर के नागरिकों और यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस बीच पर्यटन उद्योग से जुड़े वर्गों ने श्रीनगर की सुरक्षा स्थिति पर शंका व्यक्त की है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर सिद्दीक ने बीबीसी को बताया,
टूरिस्ट आज देखता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया से देखता है कि कौन सा मुल्क, कौन सा वो डेस्टिनेशन है जो सेफ है। हमारे कश्मीर में जो प्लान करता है वो 6 महीने पहले प्लान करता है, और जब उसको लेटेस्ट कोई मैसेज मिलता है कि कश्मीर में ऐसा वाक़ा हुआ, उससे हमको बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है और टूरिस्ट हमको उस वक्त टूरिस्ट की अराइवल जो होती है वो कम हो जाती है।
विश्लेषकों का कहना है कि कश्मीर में चरमपंथियों का जोर भले ही कम हो, लेकिन लोगों में भारत विरोधी भावनाओं में बढ़ोतरी हुई है। भारत का समर्थन करने वाले कुछ वर्गों का कहना है कि शांति बहाली के लिए सरकार को अलगाववादियों और चरमपंथियों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
तमिलनाडु में आज जयललिता ने छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 28 सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही उन्होंने राज्य की जनता को कई उपहारों की सौगात दी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये थी जयललिता शपथ लेते हुए। जो आप शोर सुन रहे हैं वो बहुत ही कम है जो मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम से आ रहा है। अगर आप रोड की आवाज़ सुनी तो आपके कान शायद फट जाएंगे। हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक उनके घर पोइस गार्डन से मद्रास यूनिवर्सिटी तक सड़कों पर फैल गए थे। शपथ लेते ही जयललिता फौरन काम पर लगी और उन्होंने अपने किए हुए 5 अहम वायदे पूरे किए। लेकिन उनकी दूसरी चुनौती क्या है? हमने यह सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मालन से पूछा। उन्होंने कहा, उनकी चुनौतियां दो तरह की हैं। एक तरफ आर्थिक मामलों पर, जहां राज्य में राजकोषीय घाटा करीब 9000 करोड़ रुपयों का है। किसानों का कर्ज माफ करने में ही करीब 5000 करोड़ रुपये और लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक चुनौती आई से अधिक संपत्ति मामले की भी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शायद जुलाई के महीने में आ सकता है। हमें नहीं लगता कि असेंबली में डीएम के विरोध से कुछ खास हासिल होगा। ये थे मालन के शब्द। मद्रास यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आर श्रीनिवासन इसे अलग नजरिए से देखते हैं।
आई वुड एक्सपेक्ट ग्रेटर इकोनॉमिक चैलेंज इन द कमिंग इयर्स वुड बी ग्रेटर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर।
देखिए, राजकोषीय घाटा वे संभाल लेंगे, लेकिन उन पर दबाव आएगा बिजली के मामले में। बिजली उपयोगिता कंपनियों का खर्च करीब 1,00,000 करोड़ रुपयों का है। इस खर्च को सरकार को देना पड़ेगा ताकि कंपनियां और खर्च ले सकें। निषेध नीति से आर्थिक स्थिति पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। शराब की दुकानें 12 घंटे की जगह 10 घंटे खोलने से और शराब की कुछ दुकानों को बंद करने से अगले 2 साल तक कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ये थे प्रोफेसर आर श्रीनिवासन के शब्द। निषेध नीति का महत्व यह है कि शराब की आमदनी से ही अम्मा कैंटीन या अम्मा पानी जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाया जाता है। इसका मतलब है कि चुनौतियों का सामना वे आराम से संभाल लेंगी। जाहिर है उनकी सबसे बड़ी चुनौती है आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और उसे वो काबू में नहीं रख सकती हैं।
इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। और अब आपकी चिट्ठियां,
आपकी राय। श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी और मेरे साथ हैं,
नमस्कार, राजेश प्रियदर्शी।
पहली चिट्ठी में एक पोस्टकार्ड उठा रही हूँ मुरारी साह का, गोथरा ठाकुरगंज किशनगंज बिहार से। इन्होंने तारीफ की है 14 मई के इंडिया बोल कार्यक्रम की। लिखते हैं कि प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बेबाक सवाल, बेबाक जवाब और श्रोताओं के प्रश्नोत्तर इन्हें काफी अच्छे लगे। लेकिन कहते हैं कि एक श्रोता ने कहा कि सभी को और नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, तो बीबीसी की तरफ से पूछा गया कि क्यों, ये बात इन्हें थोड़ी अजीब लगी है।
बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि हम बहुत कम कार्यक्रम कर पाते हैं खेल से जुड़े विषयों पर इंडिया बोल में, और आपको ये पसंद आया उसके लिए शुक्रिया। क्यों इसलिए पूछा गया? क्योंकि ओलंपिक खेलों में मुख्य लक्ष्य जो होता है वो पदक जीतना होता है, और नए खिलाड़ियों को मौका इस सूरत में देना शायद बहुत अच्छा विकल्प नहीं होगा, जबकि जो स्थापित खिलाड़ी है उसके पदक जीतने की उम्मीद ज़्यादा हो, इसलिए शायद ये पूछा गया होगा।
नसीम अंसारी का पोस्टकार्ड है श्रीकांतपुर जलहरा बक्सर बिहार से। इन्होंने लिखा है कि संडे दिन भर में फिल्म अजहर के बारे में आपने बहुत खुले तौर पर बातचीत की, जिससे अजहरुद्दीन से जुड़ी सारी बातें सामने थी और इन्हें लगा कि इस सब से ये जानकारी से मालामाल हो गए हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था जब एक बहुत बड़े और एक बहुत विवादास्पद खिलाड़ी के बारे में हम आप तक फिर से एक बार जानकारी पहुंचा सकें, क्योंकि इस बात को कई साल गुजर चुके हैं और कई श्रोता हमारे जो खास तौर पर नए श्रोता हैं, युवा श्रोता हैं, उनको शायद सब कुछ नहीं पता होगा, ऐसा हमारा मानना था, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया। आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।
और संडे दिन भर पर ही बटी हुई राय मुझे नजर आ रही है टीना डाबी का जो इंटरव्यू था उसे लेकर।
जी,
दो ईमेल्स हैं। अनमोल श्रीवास्तव ने लिखा है अशरफपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि पहला पत्र है जरूर शामिल करिएगा। 22 मई को प्रसारित संडे दिन भर में यूपीएससी टॉपर टीना डाबी से विविधित जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। इन्हें सुनकर लगा कि सवाल काफी अच्छे थे। विवेचना की भी इन्होंने तारीफ की है और अनुरोध किया है कि मोबाइल ऐप विंडोज के लिए जितनी जल्दी लॉन्च की जाए, काफी जरूरत इन्हें महसूस हो रही है।
बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपने कहा बटी हुई राय है, इसका मतलब यह है कि आप आगे
और भी मेरे
वो चिट्ठियां पढ़ने वाली हैं जिनको टीना डाबी का इंटरव्यू पसंद नहीं आया, तो वो भी पढ़ डालिए।
प्रकाश कोरंगा ने बड़ी पन्याली श्यामा बागेश्वर उत्तराखंड से खत लिखा है। इन्होंने भी कहा है कि इन्हें ये बातचीत पसंद आई क्योंकि इन्हें कार्यक्रम सार्थक लगा। लेकिन जो लंबा सा ईमेल हमें भेजा है संदीप कुमार महतो ने बैंगलोर से, वो लिखते हैं कि यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू सुनकर ऐसा लगा कि इंटरव्यू लेने वाले को परीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जो सवाल पूछे उसमें से परीक्षा से जुड़ा एक भी सवाल नहीं था और इससे तैयारी कर रहे छात्रों को कोई बहुत लाभ मिला होगा ऐसा नहीं लगता। रिजल्ट आने के बाद कैसा लगा, आप ममाज डॉटर हैं कि पापाज डॉटर, इस तरह के सवाल किए गए, विवादास्पद मुद्दों पर खींचने की कोशिश की गई, लगा जैसे कि किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू चल रहा हो। और आपने ये तक नहीं पूछा कि उनका ऑप्शनल पेपर क्या था, उसकी पढ़ाई कैसे हुई, मुख्य परीक्षा का इंटरव्यू किस तरह से दिया जाना चाहिए। आपने एक अच्छा मौका गंवा दिया। बीबीसी को सलाह है कि जिस तरह के गेस्ट हों उससे जानकार लोग ही इंटरव्यू लें तो बेहतर होगा।
महतो जी, आपकी राय वाकई बहुत सार्थक है और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है और इस इंटरव्यू का मकसद शायद ये था कि हम टीना डाबी कैसी हैं, वो क्या सोचती हैं, कैसी उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, कैसे वो बड़ी हुई हैं, इसके बारे में आपको एक झलक मिल सके। जहाँ तक IAS की परीक्षा की तैयारी का सवाल है तो पिछले कुछ वर्षों में कई बार हमने टॉपर्स के इंटरव्यू आपको सुनवाए हैं और तैयारी के नुस्खे भी बताए हैं, तो हम इस बार ये जानना चाहते थे, उनके व्यक्तित्व की एक झलक आप तक असल में पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उस तरह के सवाल पूछे गए।
आखिरी ईमेल है पंकज पपने का, डाबहर पोस्ट ऑफिस सोनी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से, कह रहे हैं कि इंडिया बोल बहुत पसंद आता है, विवेचना की तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं एक विनती आपसे करना चाहता हूं कि आप एक विवेचना या समीक्षा उत्तराखंड की भाषा पर करें तो बहुत अच्छा होगा।
बहुत शुक्रिया आपका, ये एक सुझाव है जिसका हम ख्याल रखेंगे और ऐसा कोई मौका हुआ, ऐसी कोई बात हुई तो हम ज़रूर इस पर कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमें पत्र लिखने के लिए। और अगर इसी तरह आप हमें पत्र लिखते रहना चाहें तो हमारा पता आपको याद ही होगा, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, आपकी राय BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और यहीं पर श्रोताओं, आपको बता दें कि तमाम श्रोताओं ने कहा कि आप पॉडकास्ट शुरू करें, तो इस समय अगर आप bbchindi.com के पेज पर जाएंगे तो दो कार्यक्रमों के पॉडकास्ट आपके पास हैं, नमस्कार भारत और विश्व भारती। कार्यक्रम में अब चर्चा करेंगे खेल समाचारों की। आदेश कुमार जी, आज भारतीय टीम का आगाज हो गया, घोषणा हो गई।
जी हाँ बिल्कुल, भारतीय टीम अगले महीने से वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी जहां 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। उम्मीदों के अनुरूप तमाम वो खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें टेस्ट टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। टीम की कमान विराट कोहली को सौंपी गई है, अजिंक्य रहाणे उपकप्तान होंगे, शिखर धवन, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, अमित मिश्रा, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, शरदुल ठाकुर एक नया चेहरा है और स्टुअर्ट बिन्नी टीम के अन्य सदस्य हैं। इसके अलावा अगर जिम्बाब्वे में होने वाली 3 एक दिवसीय और 3 2020 मैचों की सीरीज की बात की जाए तो उसकी कमान महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई है और काफ़ी नए खिलाड़ी हैं जिनमें जयंत यादव, ऋषि धवन, अक्षर पटेल, अंबाती रायडू, मनीष पांडे, केदार जाधव, जयदेव उनादकत जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत और ईरान के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण माने जा रहे चाबहार समझौता भी शामिल है। भारत और चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 50 करोड़ डॉलर मुहैया कराएगा। भारत प्रशासित कश्मीर में श्रीनगर के जड़ीबल में पुलिस थाने के बाहर हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं श्रीनगर के बाहरी इलाके में हमले में एक अन्य पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। सीरिया के लताकिया प्रांत में 2 शहरों में सिलसिलेवार कार बम धमाके और आत्मघाती हमले हुए हैं। बीबीसी
हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। 1.5 घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।